ओम शांति। इस सत्र से पहले आप सभी का योगा का सेशन चल रहा था, फिजिकल योगा का, जिसमें आपने लायन की रोरिंग की। तो चलिए अभी ओम की चैंटिंग कर लेते हैं। हाँ, शरीर से उठकर आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले ओम चैंटिंग करेंगे, तो सभी मिलकर बोलेंगे ओ। तो जब हम ओम शांति कहते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। और कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो आत्मा का संपूर्ण परिचय आप सबने प्राप्त कर लिया है। और आत्माओं के जो पिता परमात्मा है, उनका भी संपूर्ण परिचय आप सभी ने प्राप्त कर लिया है। और आज हम इन दोनों का मिलन कैसे हो, इस परिचय को जानेंगे। गीत आप सभी ने सुना सेशन के आरंभ में। गीत की पंक्ति याद है किसी को? बोलो। इस गीत के माध्यम से आत्मा को इन्वोक किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, ए मेरी आत्मा अब चल। क्या कर तू अब चल के? परमात्मा से मिलन कर। कौन से परमात्मा से? जिनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, उससे चल के तू क्या कर? मिलन कर। ये इन्वोक किया जा रहा है सोल को, आत्मा को। किस लिए? किस लिए किया जा रहा है ये इन्वोकिंग? हाँ, वो परमात्मा से तो मिलन है, पर उसकी अनुभूति क्या होने वाली है वो भी तो बताया। कहा कि परमानंद की अनुभूति होगी, जिससे जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। और इसकी विधि क्या होगी? लेकिन इन्वोक किया जा रहा है परमात्मा से मिलन कर, मिलन का पर्पस। अब मिलन की विधि भी इस गीत में बता दी गई थी। क्या था? क्या था? प्रेम, संपूर्ण प्रेम हो, संपूर्ण समर्पण हो, जीवन पूरा उसको क्या कर दो? सौंप दो। सुंदर विधि है राजयोग की, जिसका मुख्य इंग्रेडिएंट है लव, प्रेम। और कौन सा प्रेम? जो प्रेम मुझे समर्पण तक लेकर जाए। इसीलिए कबीर ने बहुत सुंदर बात कही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं हूं तो हरि नहीं है, मैं हूँ तब हरि नाही, हरि है तब मैं नाही। अर्थात उच्च कोटि का प्रेम, कि जिस प्रेम की शुरुआत भल आकर्षण से हो, आकर्षण से अटैचमेंट तक बढ़े, अटैचमेंट से उस प्रेम की अवस्था में ठहर जाए, और उस प्रेम की अवस्था में ठहर कर मेरी झूठी पहचान, जो ईगो है मेरा, जो सामाजिक मुखौटे पहन कर बैठे हैं और कहते ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो झूठा अहंकार गल से जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में आ जाए। आज वो अहंकार मुझे कंट्रोल करके बैठा है ना? मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं रिसर्चर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं नामी ग्रामी प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। परंतु ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं तो शुद्ध आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। तो वही कहा कि प्रेम जहाँ पहले आकर्षण हो, फिर वो अटैचमेंट आसक्ति में बदल जाए और वो फिर अवस्था बन जाए। ऐसी अवस्था कि झूठे ईगो पर कंट्रोल आ जाए और उसके बाद वो झूठा जो अहंकार है वो गलने लग जाए और वो गल कर मेरी दिव्य चेतना में स्थिरता शुरू हो जाए, एक नई प्रकार की एकाग्रता में मैं आ जाऊं और उस एकाग्रता में मैं उस पर समर्पित हो जाऊं। क्योंकि उस एकाग्रता में, क्योंकि ईगो गल गया तो चित्त की शुद्धि हो गई, चित्त की शुद्धि भी हो गई और स्थिरता भी आ गई, चित्त रूपी दर्पण साफ भी हो गया, स्थिर भी हो गया, एकाग्र हो गया, तो उसमें क्या दिखाई देता है? दर्पण में क्या दिखता है? छवि दिखती है, मुझे स्वयं की असली छवि, जो मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, उस सुंदर सत्चित आनंद स्वरूप की छवि का दर्शन। लेकिन तुरंत ही उस दर्पण में उस परमात्मा की सुंदर छवि भी दिख जाए, जिसको का प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए। मैं हूं तब हरि नाही, हरि है तब मैं नाही। कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, कि अब सिर्फ वो है, कि मैं वो बन जाऊं कि इस दर्पण से कोई मुझे देखे तो कौन दिखाई पड़े? वो परमात्मा जिसके लिए गीत गाते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कि रचना में वो जब दिखने लग जाए वो खुद कितना सुंदर होगा। तो प्रेम, और उस प्रेम के लिए भी उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो उस गीत में बहुत सुंदर पंक्ति थी, देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले तू उसके साथ अभिवादन। और अभिवादन का मतलब क्या होता है? हम आपस में मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ये तरीके होते हैं किसी से पहले मिलने के। तो परमात्मा से भी मिलने की शुरुआत ऐसी होगी, लेकिन पहुंचेगी कहाँ तक? कहाँ तक पहुंचेगी कि मेरा अस्तित्व खत्म, मेरे अस्तित्व से कौन दिखाई दे रहा है? परम सत्ता का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। तो प्रेम है मूल मंत्र राजयोग का। और प्रेम कभी भी किसी दो के बीच ही तो होगा ना, संबंध दो के बीच ही होता है ना। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसी प्रेम की उच्च कोटि में हम पहुंचे, उसके लिए मुझे उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा ना। आज हम इस देह में और दैहिक संबंधों में ही फंसे पड़े हैं। मेरी मन और बुद्धि जब देखो तब सिर्फ देह और दैहिक संबंधों और दैहिक वैभवों दैहिक कारोबार में ही एंगेज है। और राजयोग मन देह के संबंध, देह के वैभव, देह के कारोबार, इन सब से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में टिक कर उस ज्योति बिंदु परमात्मा के सम्मुख होकर अभिवादन करें, उससे बातचीत करें, उसको अवस्था में उतार लें, जिससे कि मेरा अहंकार मुखौटा ये देह वाला सब गल जाए और मैं सिर्फ सत्चित अपनी सत्चित आनंद स्वरूप की छवि को निहार सकूं और फिर उसकी सच्चित आनंद स्वरूप छवि को निहारूं। होगा क्या उससे फिर? उससे फिर क्या होगा? कहा ना, परमानंद की अनुभूति होगी। चूंकि हम दैहिक स्तर पर है तो हम कौन से आनंद की अनुभूति करते हैं हर रोज? विषयानंद की अनुभूति करते हैं। विषयानंद क्या होता है? विषयों से प्राप्त होने वाला आनंद। विषय क्या होते हैं? हर इंद्रिय का एक विषय है ना, आंखों का विषय दृश्य रूप रंग, कानों का विषय ध्वनि शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, नाक का विषय गंध, जीभ का विषय स्वाद। हम विषयों का आनंद ले रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति से स्पर्श होके गले लगाकर आनंद ले रहा है। भोजन की थाली में वैरायटी डिशेस, भले वो शरीर के लिए लाभकारी हो या ना हो, पर जीभ को तो टेस्ट दे रहा है ना। गंध, कोई गंध, अरे ये वाला मेरे को शैंपू इत्र चाहिए। लेकिन ये विषयों का आनंद टेम्पररी है, क्षणिक है, और इसीलिए हम आनंद की तलाश में, हालांकि रोज कर रहे हैं आनंद की अनुभूति, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे, पर चूंकि वो विषय वाला आनंद है और जिसकी नेचर है क्षणिक टेम्पररी, हमें कौन सा आनंद चाहिए? शाश्वत इटर्नल। और वो शाश्वत और इटर्नल आनंद किसकी नेचर है? परमानंद की नेचर है। और वो परमानंद माना क्या? जैसे देखो, साल में एक पूर्णिमा आती है जिस पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा। कोई कोजागिरी, कोई कुछ कहते हैं उस दिन के लिए, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन वाला जो चांद होता है अपने उच्च कोटि की प्रखरता पर होता है। शरद पूर्णिमा माना ही पूर्ण चंद्रमा, माना पूर्णिमा माना ही पूर्ण चंद्रमा, लेकिन शरद पूर्णिमा वाला चंद्रमा अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा प्रकाश बिखेरता है। न सिर्फ प्रकाश बिखेरता है, उसमें से रस टपकता है जो आपको आंखों से नहीं दिखता है पर टपकता जरूर है, और उसमें औषधीय गुण होते हैं जिस कारण से वो हम कोजागिरी के दिन क्या करते हैं, दूध को खीर बना के ओपन में रखते हैं ताकि वो चंद्रमा से टपकने वाला रस उसमें पड़े और वो मैं ग्रहण करूं तो मेरे शरीर को रोगों से मुक्ति मिले, लाभान्वित हो। ऐसे दवाइयां तो मैं यहां से भी ले रही थी ना, औषधियां, परंतु ऊपर वाली थी वो। ऐसे ही आनंद तो मैं ले रही हूं इंद्रियों के माध्यम से, पर वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, कि क्षण भर के लिए अनुभव हुआ, लेकिन वापस बैक टू द पेविलियन वही चिंता, वही नफरत, वही डर, वही तनाव, वही स्ट्रेस, वही भय, वही दुख। लेकिन परमानंद माना कि वो इधर विषयों से नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा के निकट विराजूंगी ना, क्योंकि दूध को भी ओपन में रखा गया ताकि उसके निकटता मिले उसको, तो मैं आत्मा उसके निकट विराजू, उस ज्योति, मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस परम ज्योति के निकट विराजू, तो उसमें से जो रेडिएट हो रहा है, वो जो शाइन होके बाहर आ रहा है, परमात्मा जिसका परिचय दिया, ज्ञान गुण और शक्तियों का भंडार है वो जो ज्ञान गुण शक्तियों का भंडार है, उसमें से जो किरण निकलेगी वो किससे भरी होगी? उसी ज्ञान गुण और शक्ति से भरी होगी ना। वो ज्ञान गुण शक्ति से भरी वाली किरण जब मुझ आत्मा को स्पर्श करेगी, तो मैं आत्मा भी ऑलरेडी क्या हूं? ज्ञान गुण शक्ति से भरपूर हूं मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, मैं गागर हूं वो सागर है, लेकिन चूंकि मैंने इस देह और देह के संबंध और वैभव और समाज के मुखौटे जो पहन के रखे हैं, वो असली आत्मा को मैं भूल चुकी हूं, और इसलिए उस ज्ञान गुण शक्ति को भी भूल चुकी हूं, है प्रेजेंट पर भूल गई हूं। तो वो जो परमात्मा की किरण, वो रस, सोम रस जिसको कहते हैं, उसमें से वो सोम रस इस आत्मा में जाके उसको ट्रिगर करेगा। किसको ट्रिगर करेगा? ऑलरेडी ज्ञान गुण शक्तियां मेरे अंदर भी है ना, उसको ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? जिसे ग्लास रखा है, तीन ग्लास है यहां पर, एक में दूध है, एक में चाय है, एक में पानी है। कोई बच्चा कुछ खुशखबरी सुनाने के लिए खुशी में दौड़ दौड़ के आ रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, टेबल को धक्का लग जाता है, तीनों ग्लास गिर पड़े। दूध वाले ग्लास में से क्या निकल के आएगा, क्या निकल कर आएगा? चाय वाले ग्लास में से क्या निकल कर आएगा? पानी वाले ग्लास में से क्या निकल कर आएगा? क्योंकि था ना उसमें। अब मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर दोनों है, देवत्व भी है और आसुरियत भी है, दोनों है ना। देवत्व अर्थात ज्ञान गुण शक्तियां, जो सच्चित आनंद में आत्मा हूं, वो मेरी अपनी है, लेकिन आसुरियत, काम क्रोध मोह अहंकार, ये मेरी अपनी है या अक्वायर्ड है? अक्वायर्ड है। तो अब क्या होता है, ट्रिगर क्या होता रहता है मेरे में से? कुछ भी बात आई, कोई ट्रिगर हुआ, क्या निकल कर आता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल के आ जाता है, यही होता है ना। लेकिन अब जब मैं परमात्मा के निकट जाऊंगी और उसमें से कौन सी शक्तियां किरणें आ रही, ज्ञान गुण शक्ति वाली, वो किसको जाके ट्रिगर करेगा? मेरे ज्ञान गुण शक्तियों को ट्रिगर करेगा, तो वो छलकेगा मेरे से, वो मेरे से छलकने लगेगा। और जैसे वो छलकेगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा? जैसे कहीं बहुत बदबू है, बहुत पावरफुल सुगंधित अगरबत्ती लगा दी, तो क्या होगा? बदबू का प्रभाव कम हो जाएगा। तो वो जो काम क्रोध वाले भाव थे वो क्या रहेंगे? दबे पड़ेंगे। लेकिन कोई चीज है पर दबी पड़ी है, कभी भी सिर उठा सकती है, कभी भी सिर उठा सकती है। और इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? भस्मीभूत करना पड़ेगा। इसीलिए राजयोग में योग को अग्नि कहा गया है, योगाग्नि। आपकी योग की क्वालिटी इस हद तक पहुंच जाए कि योग एक अग्नि का रूप ले। अग्नि मानो जैसे फिजिकल अग्नि देखते, वो अग्नि वैसे नहीं बन जाएगी, बट अग्नि का नेचर क्या है? क्या है अग्नि का नेचर? ताप तो है ही, लेकिन उस ताप से उसके रिजल्ट क्या आती है? जला देती है। जला देती है मतलब क्या करती है? नष्ट कर देती है कि ट्रांसफॉर्म करती है? क्या करती है? कोयला था, जलाया, कोयला नष्ट हुआ, लेकिन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? राख में ट्रांसफॉर्म हो गया। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है वो। जबकि जल, जैसे कोई मैला कपड़ा है, गंदा कोई बर्तन है, जल में डाला तो सरफेस लेवल पर क्लीनिंग करेगा, वो क्लेंजिंग करेगा ना। समझो ग्लास में बहुत चारों तरफ मड लगा हुआ था, मैंने पानी के टब में डाल दिया, धीरे धीरे जल ने क्या किया, वो जो ग्लास के सरफेस लेवल पर जो मड चिपकी थी उसमें घुसकर उसको डिसॉल्व करके उस मड को अपने में ले लिया और उस सरफेस को क्लीन कर दिया। तो जल भी क्लीन करता है, अग्नि भी क्लीन करती है, लेकिन जल सरफेस लेवल की क्लींजिंग करेगा और अग्नि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। तो जो मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठे हैं ना, उसको भस्मीभूत करेगी जब मैं उसके निकट विराजूंगी, उसको अभिवादन करूंगी, उसमें खो जाऊंगी, एकाग्र हो जाऊंगी, स्थिर हो जाऊंगी। अब वो किरणें काम करेगी। जैसे स्कूल के अंदर टीचर ने हमें एक एक्सपेरिमेंट कराया था, चलो बच्चों बाहर चलो, हम आपको एक जादू दिखाते हैं। जादू के नाम पर क्या किया टीचर ने? कॉन्वेक्स लेंस निकाला, मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, ओपन में जाके हम सबको बच्चों को लेके गया और उस ग्लास को भी निकाला, पैकेज में बंद था, उससे बाहर किया, सन चमक रहा है आसमान में, उसकी किरणें उस लेंस के फोकल पॉइंट पर एकाग्र हो तब तक लेंस की सेटिंग करता रहा, ऐसे 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 दिशा देखा सन किधर है, फिर क्योंकि ओरिएंटेशन उस लेंस का कहाँ होना चाहिए? सन की तरफ होना चाहिए। और फिर सन की तरफ ओरिएंटेशन होके अब उसको सेट कर रहा है कि उसकी जो किरणें हैं जो सन की, लेंस के फोकल पॉइंट पर आके जमा हो जाए। और जब वो सेटिंग पूरी हो जाती है, वो जो अभी तक हाथ हिला हिला कर सेटिंग कर रहा था, जिस घड़ी उसने देखा कि एकदम फोकल पॉइंट पर सनरेज फोकस हो रही है, हाथ को स्थिर कर देता है और ऑलरेडी उस कॉन्वेक्स लेंस के नीचे एक माचिस की तीली कागज का टुकड़ा रख देता है। अब क्या होता है, चूंकि लेंस को मैंने पकड़ा है, बिल्कुल स्थिर है मेरा हाथ, हिल नहीं रहा है, सन की रेस फोकस्ड है, फोकल पॉइंट पर है, तो सन रेज उस फोकल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होके इग्निशन पॉइंट पर वो टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है. और जैसे इग्निशन पॉइंट तक टेम्परेचर राइज होता है, नीचे रखी माचिस की तीली या कागज का टुकड़ा जल जाता है. कागज का टुकड़ा जला, कागज खत्म हुआ, लेकिन बदले में काला कार्बन वहां रह गया. माचिस की तीली जली, लेकिन लकड़ी वहीं पड़ी है ना. माना क्या हुआ, चेंज हुआ. ऐसे ही जब उसके प्रेम में खोकर, उसके निकट जाकर, उसके अभिवादन करके, बातचीत करते हुए अपना मैंपन पूरा गला देंगे, मेरा अस्तित्व ही उसका अस्तित्व हो जाएगा. उस स्थिरता में मुझे कुछ नहीं करना, समर्पण माना मैंने कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है आपने करना है. वो ज्ञान सूर्य की किरणें उस आत्मा के फोकल पॉइंट अर्थात मन में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते, जिसको चित्त कहते, जहाँ ढेर सारा स्टोरेज पड़ा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं का, उनको वो चलाएगा, उनको वो चलाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा. और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, जो काम क्रोध की फ्रीक्वेंसीज पड़ी है, उसको लव, उसको शांति की फ्रीक्वेंसी में बदल देगा. तो ऑलरेडी मेरी फ्रीक्वेंसी जो है सो है, पर कुछ जो यहाँ पे ढेर जमा हो गया था अपोजिट का, वो भी अगर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो मेरी सात्विकता क्या होगी, परसेंटेज उसकी बढ़ेगी. जो चीज बढ़ जाएगी वो छलकेगा ना, छलकेगा या नहीं छलकेगा, तो उससे परमानंद मिलेगा मुझे, क्योंकि अब मेरे अंदर वो काम क्रोध वाली जो फ्रिक्वेंसीज है वो नष्ट होती जा रही है, मेरी सात्विकता का अंश बढ़ता जा रहा है. और इसके रिजल्ट है वो जो सोमरस वहां से आ रहा है, वो सोमरस मुझे परम आनंद की अनुभूति दे रहा है. मैं हूं ही आनंद स्वरूप ना. आत्मा का एक गुण क्या बताया, आत्मा सत चित आनंद है, स्वरूप है उसका. सत माना, सत माना क्या, सत माना जिसका एग्जिस्टेंस तीनों कालों में एग्जिस्ट करे, जिसका अस्तित्व पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब काल उसको खत्म नहीं कर सके. आत्मा कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी. शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा. समझ में आया, सत किसको बोलते हैं, जिसको ही कहा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है. तो मैं सत हूं. तो जब मैं अजर हूं, जब मैं अमर हूं, जब मैं अविनाशी हूं, तो मुझे भय सताएगा क्या, भय सताएगा क्या? अर्थात मेरे में निर्भयता आ जाएगी. क्या आ जाएगी मेरे में, निर्भयता. फिर दूसरा क्या है, आत्मा क्या है, सत चित आनंद. और चित माना चैतन्य, चैतन्य है वो. और चैतन्य है का मतलब क्या होता है, चैतन्य का मतलब क्या होता है, जिसे होश है. जिसे होश नहीं है उसको क्या कहते हैं, बेहोश, अनकॉन्शियस. अर्थात ही जहां चैतन्यता का अभाव दिख रहा है, चैतन्यता का प्रभाव नहीं दिख रहा है, उसका अभाव दिख रहा है, देखो तो इसको क्या हो गया है, बेहोश हो गया है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यही बोलते हैं ना हम। तो चैतन्यता माना जहाँ होश है, और होश है माना जहाँ ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, वरना हम बेहोश होकर जी रहे हैं। मैं कौन हूँ? ये 5 फुट लंबा चौड़ा शरीर, ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं राज्यों का टीचर हूँ। समझ में आता? ये अज्ञानता है मेरी, ये तो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। इसको मैं अपना मैं हूँ ये कैसे कह रही हूँ? मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चैतन्यता होश जिसको ये कहते अज्ञानता से परे हो जाती है, ये अज्ञानता है ना। मेरी देह को मैं बोलना, मेरे रोल को मैं बोलना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बोलना, मेरे घर को मैं बोलना, क्या ये अज्ञानता नहीं है? तो चैतन्य माना जहां अज्ञानता का अभाव है, अज्ञानता से मुक्ति है, जहां ज्ञान है। तो मैं सत्य हूं तो निर्भयता आ गई मेरे पास। मैं अज्ञानता से पर्दा मेरा हट चुका है, मुक्ति मिल चुकी है मुझे। और अज्ञानता से मुक्ति का फायदा क्या होता है, निर्भयता का फायदा क्या होता है, और तीसरा क्या है, आनंद। इन तीन को हम समझेंगे। आनंद माना जो मैं पहले बोल के आई, विषय आनंद से परे, इंद्रियों से परे, डायरेक्ट मेरा जो स्वरूप है, जो मेरा नेचर है, जिसको मैं अनुभव करती हूँ। और उसकी फिर रिजल्ट क्या आएगी, मैं परमानंद की अनुभूति कर रही हूँ, मैं सत्चित आनंद की अनुभूति में हूँ, और उस सत्चित परमात्मा जो आनंद है उसके कनेक्शन में हूँ, उससे मैंने मिलन बनाया है, उससे मैंने वो सोमरस ग्रहण किया है, ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मैंने अपने अंदर भरी है, उसके रिजल्ट क्या, मैं कैसे मानूं कि मैंने राजयोग का अभ्यास किया, ये मेरा अभ्यास राइट था, सफल था, सार्थक था, मैं कैसे मानूं? रिजल्ट कुछ दिखनी चाहिए ना मुझे, क्या दिखेगा आज? हाँ जी, सबसे पहले जैसे कान सत्य माना अचर अमर अविनाशी, तो भय खत्म, निर्भयता। आज कितने लोग हैं भय के भाव से भरे हैं, पता नहीं कल क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, विश्व में परिस्थितियां बदतर होती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है, महंगा मिल रहा है, सारा पैसा इसमें लगते जा रहा है, मेरा बजट इम्बैलेंस हो रहा है, क्या होगा? भय भय नहीं, निर्भयता से मुझे निर्भयता बढ़ानी है, और वो बढ़ेगी जब मैं सत चित आनंद में। क्या है आज के टॉपिक का, आपको पता है? उसके टाइम टेबल में आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, एक्सपीरियंसिंग द बीइंग बियॉन्ड डूइंग। तो कल क्या होगा उसके लिए करने से पहले बीइंग उसमें स्थित हो जाना है। ओवरऑल थीम क्या है आपकी कॉन्फ्रेंस की, इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस माना है डूइंग, पर अभी का लेसन क्या है, बियॉन्ड डूइंग, बियॉन्ड परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज तब होगी जब पहले मैं परफॉर्मेंस से अवे हो जाऊं, उसके बियॉन्ड चले जाऊं। वो परफॉर्मेंस जिस बीइंग के कारण हो पाती है उस बीइंग में स्टेबलाइज हो जाऊं, और वो बीइंग जिसको बिलोंग करती है उस सुपर सुप्रीम बीइंग से मिलन मना लूं, ऐसी क्वालिटी का मिलन मना लूं कि जहां पे अब हरि है मैं नाही। गणित की भाषा में एक और एक दो, संगठन की भाषा में एक और एक ग्यारह, लेकिन अध्यात्म की भाषा में, उच्च कोटि की प्रेम की भाषा में एक और एक एक ही रहता है। इसको कहते हैं राजयोग। शुरुआत कहां से होगी? देह और देह के संबंधों से परे हो जाना, जिसको ही गीता में कहा, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्यम् मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, हे अर्जुन, हे पार्थ, जब तू सर्व धर्मों को परित्याग कर मुझ एक की शरण में आएगा, मैं तुझे तेरे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया, इसका अर्थ समझ में आ गया? ये दोहे का अर्थ समझ में आया? जो अभी तक मैंने इतना देर से एक्सप्लेन किया था, इस दोहे का ही था वो सब सार, कि सब का त्याग कर। सोचने की बात है कि अध्यात्म जो धर्म पालन की बात करता है, वहां पे अध्यात्म में बात कही जा रही है सर्व धर्मों का परित्याग कर। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, विरोधाभासी नहीं है, लगता है ना? सतह के स्तर से देखिए, सरफेस लेवल पर तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि धर्म का भी अर्थ, ये देह के भी तो धर्म होते हैं ना, तो कौन से धर्मों का परित्याग कर? देह के धर्मों का, जो अक्वायर्ड है। शिशु, ये शरीर भी तो माँ के गर्भ में अक्वायर हुआ है ना, तो जो भी अक्वायर किया है उसको परित्याग कर, उसको साइड में रख, मेरी शरण में आ जा। शरण में आने के लिए तो निकट ही जाना पड़ता है। हाँ, धर्म पर कौन सा धर्म? एक होता है जैसे पानी है, ठीक है, पानी का कोर क्वालिटी क्या है? शीतलता, ठीक है। एक बच्चा स्कूल में गया और मैडम ने पढ़ाया, बच्चा आया घर में, जैसे छोटा बच्चा होता है तो सब कुछ सुनाने की इच्छा होती है ना उसको, आते ही मम्मी शुरू हो जाएगा, मम्मी आज मैडम ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, सीधा गुस्सा, उसको पता है मम्मी किचन में होती है, सीधा गुस्सा अंदर मम्मी के पास, पर मम्मी इत्तेफाक से थी नहीं, लेकिन गैस पर पानी उबलने के लिए रखा हुआ था। पढ़ के क्या आया था? पानी शीतल होता है, नहीं पढ़ के आया था, पानी का गुणधर्म शीतलता, पर चूंकि रट के आया था ना, समझ के नहीं आया था, तो क्या किया, उस पानी के उबलते हुए जो पॉट रखा था ऊपर हाथ रख दिया, हाथ रखा तो क्या होगा, जल गया, जलेगा तो क्या होगा, चीख निकली, मम्मी, मम्मी को आवाज गई, क्या हुआ बेटा, हाथ जल गया, कैसे, मम्मी मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, क्यों रखा, मेरी मैम ने बोला, पानी का गुणधर्म शीतलता होता है, बेटा तेरी मैम ने सही बोला है, परंतु तू उसका अर्थ नहीं समझा है, पानी इस समय गैस के ऊपर है, मतलब हीट को अक्वायर कर रहा है, तो जब उसने हीट को अक्वायर कर लिया, यह भी शीतल महसूस नहीं होगा, लेकिन कब ये शीतल महसूस होगा? इसको हीट जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई बंद कर दो, इतनी देर में जो उसने हीट अक्वायर की जब चालू था उसको रिलीज हो जाने दो, तब आप पानी को हाथ लगाना। पानी क्या होगा? तो जो इनेट, इसको बोलते इनेट, जो आपने कहा ना धर्म भी, और ये जो दूसरा जो धर्म था, धर्म माने धारण, तो एक है इनेट बाय डिफॉल्ट आप में धारण है, और एक है जो बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो आपके इनबिल्ट सिस्टम में नहीं है लेकिन आपने अक्वायर किया है। फॉर एग्जांपल, ये शरीर बाय डिफॉल्ट इसमें मैं आत्मा विराजमान हूं, बट इस शरीर में कोई दूसरी सोल आके अटैक करे, तो जब वो अटैक करेगी पावरफुल होगी तो ये प्रेजेंट में जो सोल बैठी हुई है उसको क्या कर लेगी? कंट्रोल करेगी, और उसकी जो नेचर है वो बड़बड़ शुरू करेगी। तभी बोलते नहीं इसमें ना कोई घुसा है, बोलते हम ये भाषा, इसमें ना पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है, भूत बोल रहा है भूत। ऐसे ही मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, शुद्ध हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन ये भूत घुस गए हैं ना हमारे अंदर। कैसे घुसे? क्योंकि मैंने चेतना से कनेक्शन, चैतन्य से कनेक्शन तोड़ लिया, इसको देखती रही और कहा यही मैं हूँ, और इसके परिणाम स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भूत बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं। और इसलिए हम कितना सोचते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना मैं प्रेम से ही व्यवहार करूंगी, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल में? मैंने सोचा था प्रेम से व्यवहार करूंगी लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन आई और जो मैंने गुस्से से उसको दो गालियां बक दी। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि भूत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं इसीलिए भगवान ने यहां क्या सिखाया, ये मत बोलो कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, नहीं, ये भूत है तुम्हारे अंदर का। मैं तो शांत हूं, शीतल हूं, स्थिर हूं, मैं तो प्रेम हूं, मैं तो आनंद हूं, मैं तो खुशी हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। पर इसको रिहर्स करना पड़ेगा, जैसे योगा की प्रैक्टिस में भी क्या बताया, फिजिकल योगा में, कि माइंड इतना सेट होता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है ना वो करते करते आप किस में बैक चले जाएंगे, जो आपके अंदर में पहले फिट है, लेकिन वो पहले वाला फिट को ओवरपावर करने के लिए जो नया वाला फिट करना है उसको बार 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 प्रैक्टिस, बार बार रिहर्सल करनी पड़ती है। और इसीलिए परमात्मा ये कहते हैं मैं कौन हूं, इसको बार बार रिहर्स करो, इसकी रिहर्सल करो। मैं कौन हूं याद दिलाओ अपने आप को। याद दिला सकते? इजी रहेगा, सात गुण बताए ना, याद करने का फॉर्मूला सच्चित आनंद, इसमें तीन गुण आ जाते हैं, मैं सत्य हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, निर्भय, चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अज्ञानता से मुक्ति, आनंद, आनंद माना ही न सुख न दुख, एक संतुष्टि, एक स्थिरता, उसको कहते हैं आनंद। तो ये तीन गुण हो गए, तो अपने आप को याद दिलाओ, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तीन, अगले तीन, श श श, तीन बार बोल सकते हो, श श श बोलो। पहला श शांति, दूसरा श शक्ति, तीसरा श शुद्धि। भूल भी जाए तो श श श याद कर लेना, याद आ जाएगा, है ना? भूल भी जाए तो बस बोलना श श श, शांति शक्ति शुद्धि, याद आ जाएगा। तो तीन गुण ये याद आ गए, सच्चिदानंद, तीन गुण वहां से याद आ गए, सातवां गुण प्रेम, प्रेम की चर्चा की हमने पूरी, ये मेरे सात गुण है, अपने आप को याद दिलाते रहो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, मैं चैतन्य ज्ञान से भरी आत्मा हूँ, मैं आनंद से भरी आत्मा हूँ, अर्थात जहाँ मुझे संतुष्टि है, स्थिरता है, जहाँ विक्षिप्तता नहीं है, जहाँ विचलित बना नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, स्टेबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है. स्टेबिलिटी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी. तो कॉन्सेंट्रेशन फिर क्या होता है? एकाग्र करना है. किसको एकाग्र करना है? मन और बुद्धि जो भटक रहे हैं ना, देह में, देह के संबंधों में, देह के वैभवों में, देह के कारोबार में, उस भटकते हुए मन बुद्धि को कुछ घड़ी के लिए स्वयं के मूल स्वरूप ज्योति बिंदु पर टिकाओ. तब कहा, ऐ मेरी आत्मा चल कर ले ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन. किसने मिलन करना है? मुझ आत्मा ने. तो पहले मन बुद्धि वहां तो टिकाना पड़ेगा ना. पहले मन बुद्धि कहाँ टिकाना पड़ेगा? जिसने मिलन करना है तो पहले अपने पर मन बुद्धि को टिकाओ, और अपने पर टिकाकर उस पर टिकाओ. कहाँ? लेंस पहले लेकर गए ना बाहर, हम लेंस को स्थिर किया ना पहले, उस लेंस पर, उसको फोकल पॉइंट पर, उसको लाइट को आने दिया. तो मैं स्थिर हो जाऊं, उसके सामने जाऊं, क्योंकि लेंस को सूर्य के एक्सपोजर में लेके जाना पड़ा. इसके अंदर वो वाला एक्सपेरिमेंट सर जी, गुरु जी करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं. उसको बाहर पैकेट से, पैकेट में रखकर कॉन्वेक्स लेंस को कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट? पैकेट से भी बाहर निकालना पड़ेगा, छत के अंदर से भी बाहर लेके जाना पड़ेगा, फिर वो जिस दिशा में है उस दिशा में आपको रखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन चाहिए उसको, फिर उसकी फोकल पॉइंट पर उसकी रेस पड़े, सेटिंग करनी पड़ेगी, तब आप स्थिर एकाग्र, तब उसकी छवि, कॉन्सेंट्रेटेड पावर दिखेगा उसमें, उसकी पावर कितनी है. ऐसे तो कितने कागज और माचिस की तीलियां पड़ी रहती है रास्ते में, जलते हैं क्या? लेकिन उसमें कैसे जल गया? तो ऐसे मेरे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये लोअर फ्रिक्वेंसीज जो बैठी हुई है ना, इसका खात्मा करने के लिए ये राजयोग चाहिए. मेरे अंदर में शांति, शक्ति, शुद्धि, निर्भयता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, ये भी बैठा हुआ है, परंतु उसका परसेंटेज डाउन है. ये जलेगा, यही वाला ट्रांसफॉर्म होगा, इसमें ऐड हो जाएगा. तो दो काम होते हैं राजयोग से, प्यूरिफिकेशन एंड एम्पावरमेंट. क्लियर? प्यूरिफिकेशन भी होगा और एम्पावरमेंट भी होगी. और वो एम्पावर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखेगी? मैं सत्य हूं, निर्भयता का गुण बढ़ जाएगा. छोटी छोटी बातों पे जो भयभीत हो रहे हैं हम, क्योंकि भयभीत होना माना स्टेबिलिटी गंवा देना, भयभीत होना माना ही कॉन्सेंट्रेशन गंवा देना. लेकिन निर्भय हूं तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बरकरार है, मेरी स्टेबिलिटी बरकरार है. जब मेरी स्टेबिलिटी बरकरार है तो मेरा परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज अपने आप होने वाला है. आप देखो, इस मंच पर किसी को डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, वो आया है और अपने परफॉर्मेंस में वो टॉप लेवल का है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए जो स्टेज दिया है ना हमने उसको, वो हिल रहा है. उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? तो परफॉर्मेंस जहां करना है, जिसने करना है, उसकी भी तो पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए. तब का इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस. तो माइंड और इंटेलेक्ट इस पे मेरा कंट्रोल, आज ये मुझे कंट्रोल किए हुए. आत्मा और मन का रिश्ता मालिक और दास का है, लेकिन हो गया है उल्टा. मन न चाह रहा है ना अभी. तो मास्टरी की जब बात कर रहे हैं, तो मैं जो मास्टर हूं, वापस कमान को मैं पकड़ूं. अभी मन पकड़ के बैठा हुआ है, वो मुझे न चाह रहा है, क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी से घिरे हुए हैं हम. तो कभी भय में है, कभी बेहोशी में है, क्या होगा मुझे पता नहीं. अरे जो होगा अच्छा ही होगा. क्या है गीता का लेसन? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा. तो आप इसको क्यों नहीं पकड़ते? अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैंने राजयोग सही रीति से किया है, मेरी एम्पावरमेंट हुई है, मेरी प्यूरिफिकेशन हुई है, उसके रिजल्ट प्रैक्टिकल जीवन में निर्भयता बढ़ेगी. ज्ञान को यूज करूंगा, अरे जो होगा अच्छा ही होगा ना, जो होगा अच्छा ही होगा. जैसे कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसमें बीच में कोई सीन ऐसे आते हैं जहां लगता है कि बात बिगड़ गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ड्रामा सब कुछ ठीक था. लगता है कि नहीं लगता है? अरे सब कुछ ठीक था. सिमिलरली एक ड्रामा है ना ये, संसार के रंगमंच पर ड्रामा है और हम एक्टर्स पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो मैं चैतन्य हूं, ज्ञान से भरी हूं, यह ड्रामा है. वर्तमान में मुझे लगता है कि ये सीन अकल्याणकारी है, पर हो नहीं सकती है. एट द एंड यू विल सी दिस, जो मुझे इस समय अकल्याणकारी लग रही थी, एट द एंड यू विल फाइंड दैट दिस वाज द कल्याणकारी. किस किस के जीवन में ऐसी बातें आई है कि जब वो घटना घटी थी, हाय मैंने तो सब कुछ खो दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, रीसेटल होने के बाद, अच्छा हुआ वो लाइफ में बात आई थी. तो उसी समय अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हम? तो ये उसी समय अच्छा बोलने की हैबिट क्रिएट होगी. हाँ, उस समय वो मेरा ज्ञान मुझे कहे इसमें कोई कल्याण है. क्यों ये कहे? अगेन टू हैव द स्टेबलाइजेशन. बात स्टेबिलिटी की है ना, बात एकाग्रता की है ना, तो स्टेबिलिटी आएगी, आनंद. अच्छा खाना मिला तो भी क्या बात है, बुरा खाने मिला तो भी क्या बात है, परिस्थिति अनुकूल है तो भी क्या बड़ी बात है, परिस्थितियां प्रतिकूल है तो भी क्या. मैं तो अपनी संतुष्टि में, सुखद भाव में स्थिर हूं. न मुझे सुख भासता है, न मुझे दुख भासता है. एक शाश्वत संतुष्टि वाली स्थिर बुद्धि मेरी बनी हुई है. चित्त मेरा स्थिर है, मन मेरा चंचलता से पार अचल है. ये रिजल्ट आएगी. और इन सब के रिजल्ट फिर क्या होगी पता है? इन सब की रिजल्ट आएगी, लेटिंग गो करना इजी हो जाएगा. अभी क्या है इजी? होल्डिंग ऑन इजी है, पकड़ के. मैं कभी नहीं भूलूंगी इसको, मैंने पकड़ के रखा है. लेकिन जैसे जैसे योग की क्वालिटी बढ़ेगी, रियल प्यूरिफिकेशन होगा, रियल एम्पावरमेंट होगा, लेटिंग गो इजी. और दूसरा क्या इजी होगा? फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग इजी हो जाएगा. और तीसरा क्या होगा? एनीथिंग दैट कम्स इन माई लाइफ, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी सर्कमस्टांस मेरे लाइफ में आए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट. I am responsible for this. अभी क्या हो रहा है? इसके कारण ना मेरे जीवन में हुआ है, ये है ना मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या करती है, उंगली दूसरे दूसरे के पास जा रही है, लेकिन वियोग की क्वालिटी जैसे बढ़ेगी ना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ माई हार्ट, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, I have to adjust, I have to accommodate, I have to tolerate, I have to transform. ये responsibility. जैसे ही हम responsibility लेंगे ना, इधर उधर के कारण कितना negative चला रहे थे, कितना waste सोच रहे थे, stop, full stop. जब मुझे पता चल जाए ना ये गलती मेरे कारण हुई है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन उसके तो उसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, इसको बताएंगे उसको बताएंगे, लेकिन जब मेरी चुप रहो ना, कितनी बार बताओगी मेरे को, बोलते नहीं बोलते हैं क्योंकि मेरी गलती है ना, तो अननेसेसरी जो वेस्ट चलता है, जो निगेटिव चलता है, फुल स्टॉप, जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ऑलरेडी ड्रेनेज हो चुका है और बहुत निगेटिव चला के हम क्या कर रहे हैं, और भी निचोड़ रहे हैं उसको, तो बचेगा क्या, और फिर बोल रहे हैं स्टेबिलिटी, इस शरीर को ताकत ही नहीं है और कहते हैं ये हाथ हिलता है, ताकत ही नहीं है तो हिलेगा नहीं तो क्या करेगा, इसकी खुराक अच्छी होनी चाहिए ना, ये ताकतवर होगा तो स्टेबल होगा ना, ये ताकतवर होगा तो एक्सरसाइज में मुझे कहा जा रहा है 2 मिनट तक ऐसे ही पकड़ के रखो, पकड़ के रख सकती हूं, लेकिन अगर शरीर में ताकत नहीं है तो 2 मिनट तो क्या, 1 सेकंड में ही ऐसे हो जाऊंगी मैं, तो क्या चाहिए होती है स्टेबिलिटी के लिए, ताकत, अब निगेटिव सोचने बैठेंगे, वेस्ट सोचते बैठेंगे तो ताकत क्या हुई, जो थोड़ी बहुत है वो भी निकल जा रही है, तो कहां से स्टेबिलिटी आएगी, कहां से मैं अपने आप को बीइंग में स्टेबलाइज कर पाऊंगा, इसीलिए तो सिर्फ डूइंग में लगे पड़े हैं, भगवान को याद करने के नाम पर भी माला चल रही है, मंत्र चल रहा है, पर लगाना कौन था उस पे, देखा चित्र सामने दिख रहा है, तो चलिए आते हैं इस मुद्दे पर, ऊपर में दिखाया है एक बच्चा और बाप बैठा है, तो जैसे एक बच्चा देहधारी बच्चा देहधारी पिता को याद करता है, ऐसे राजयोग के अंदर एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा ने ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को याद करना है, लेकिन उस याद करने के लिए आपने देखा है नीचे योगी बैठा है, उसका कनेक्शन ऊपर परमात्मा से दिखाया है और उसके चारों तरफ कुछ भाव दर्शाए गए हैं, जहां क्रॉस 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 दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो बहुत बड़ी लिस्ट, पर इसे दिखाया है, इन भावों से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, साइंस भी कहती है 2 वेव्स गेट connected only when they have same frequency. परमात्मा का परिचय मिला है ना, उसकी frequency, उसके गुण में कहीं ये आया कि वो काम का सागर है, क्रोध का सागर है, है क्या, नहीं है, तो मैं क्रोध में स्टेबलाइज होकर उसको याद कर लूं, कनेक्शन होगा, मोह में स्टेबलाइज होकर उसको याद करूं, कनेक्शन होगा, तो देख ले अपने आप की चेकिंग कर ले, हम भगवान को भी याद कर रहे होते हैं तो वास्तव में कौन से भाव में होते हैं, क्योंकि अब देखा होगा अक्सर करके, वही तो मैं कह रही हूं, इसीलिए कहा भगवान को याद करके अगर प्राप्ति करना है तो इन भावों से नहीं, वो तो सिर्फ अपने आप को हम तसल्ली दे रहे कि मैं भगवान को याद किया, पर भगवान से कनेक्ट हुए नहीं, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन ज्यादातर मैं इसी फ्रीक्वेंसी में याद रहकर याद कर रही हूँ। उदाहरण के लिए, हे मेरे बच्चे को किसी ने तंग किया है, पड़ोस के बच्चे ने, अब मैं भगवान को याद करती हूँ, हे भगवान जैसे इसने मेरे बच्चे को सताया है ना, इसके बच्चे को भी सता, तो याद तो भगवान को कर रही हूँ। लेकिन भाव कौन सा है, बच्चे के प्रति मोह, फिर गुस्सा आ रहा है, तो कौन से भावों में टिक कर हम भगवान को याद कर रहे हैं। इसलिए कहानी प्रेम, शरणागति, गोपी भाव जिसको कहते हैं, गोपी भाव किसको कहते हैं पता है, किसको कहते हैं? श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, ग्वालों के नहीं चुराए थे। पर बात ग्वाला और गोपी का नहीं है, स्त्री और फीमेल पुरुष का नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। इसलिए क्योंकि जब ये लीला दिखाई जाती है उसमें गोपियां पूर्ण समर्पित होती है कृष्ण को, जबकि ग्वाले सखा रूप में होते हैं। गोपी मेरा अस्तित्व ही उसके अस्तित्व से है, अगर वो नहीं है तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं। जिसको कहा प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, तो गोपी भाव शरणागति, मेरा अस्तित्व ही उसके अस्तित्व से है, कि जहां मैं अपने को भी भूल जाऊं और सिर्फ वो याद रह जाए, वो शरणागति का भाव, वो उस उच्च कोटि का प्रेम। और वहां पे पिक्चर में ये भी दिखाया है, क्रॉस किसको किया है, ऋषि महात्मा कोई बैठे हैं, माला को क्रॉस किया है, मंत्र को क्रॉस किया है, शास्त्र को क्रॉस किया है। क्यों? क्योंकि भगवान को याद करने के नाम पर हम यही करते हैं, या तो मंत्र उच्चारण करते हैं, या तो माला फिरते हैं, ये शास्त्रों का पठन करते हैं। अब इसने उसको भी क्रॉस कर दिया, आप कहेंगे अरे ये कैसा राजयोग है, कैसा राजयोग है ये? क्योंकि देखो मंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्रणा, और ऐसी मंत्रणा जिससे मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन आजकल जो मंत्र चैंटिंग हो रही है, मन स्थिर हो रहा है, या मुख मैकेनिकली चैंटिंग कर रहा है और मन भाग रहा है? मुख मैकेनिकली चैंटिंग कर रहा है, मन भाग रहा है, जबकि मंत्र किस लिए था, मंत्र किस लिए दिया, स्वयं को मंत्रणा दो, ऐसी मंत्रणा जिस मंत्रणा से तुम स्थिर हो जाओ, तुम्हारी चंचलता भाग जाए, तुम अचल हो जाओ, अडल हो जाओ, अडोल हो जाओ। लेकिन या तो मन डोल रहा है, भाग रहा है, चलायमान हो रहा है, तो ऐसे मंत्र का जाप करके कोई फायदा? तब कबीर जी को कहना पड़ा, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, अब कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। कि मंत्र को भी छोड़ दे, और ये माला पकड़िए ना, उसका भी यही था भाव, कि माला में एकाग्र हो जाओ, मन को लगाओ कि प्रभु का नाम सिमरण कर रहा हूं। लेकिन प्रभु का नाम क्या सिमरण कर रहे, वो हाथ मैकेनिकली सिर्फ कर रहा है, मन तो भाग रहा है। ऐसे ही शास्त्र, शास्त्र में कहा सर्वधर्मान्न परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो उसी देह में पकड़ के बैठा हूं, उन्हीं मुखौटों को लेकर चल रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर ये मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं। इसीलिए तो रिटायर हो जाने के बाद भी एक्स लग जाता है, अरे भाई अब आप भी इंजीनियर नहीं हो, अभी आप अधिकारी नहीं हो, तो लिखूंगा मैं एक्स अधिकारी, क्योंकि अगर मैं अधिकारी नहीं हूं तो फिर मेरी पहचान क्या है? समझ में आ रही बात? इनको तो गला देना है। तो गोपी, गो को इंद्रियां भी कहते हैं, इंद्रियों के समूह का गो, और पी माना पी जाना। गोपी वो है जिसने इंद्रियों को, मन बुद्ध को पी लिया, अर्थात वश में कर लिया, वश में करके उस पर फोकस कर दिया, अपने स्वयं के आत्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पर, और जो मेरा पिता है परमात्मा ज्योतिर्बिंदु उसके स्वरूप पर उस मन बुद्धि को फोकस कर दिया, वो है गोपी। क्लियर राजयोग क्या होता है? हाँ, तो कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति से भी मिलन मनाए, उसको याद करे, तो चार आधार होते हैं। पहला परिचय, फिर उसके साथ कोई पारिवारिक संबंध, फिर उसमें प्रीति, फिर उसमें प्राप्ति। तो फिर वो व्यक्ति याद आता रहेगा या नहीं आएगा? हाँ, उसको याद करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं अरे आजकल आप हमें याद, अरे आपको याद करने की क्या जरूरत है, आप तो हमारे यादों में समाये रहते हो। कहते नहीं कहते हैं, तो भगवान हमारी यादों में समाया रहेगा। कब? पहले परिचय तो हो जाए, तो वो तो हो गया, अपना भी परिचय मिला, परमात्मा का भी परिचय मिला, तो पहला आधार फिनिश, माना पता चल गया है मेरे पास वो आधार। पारिवारिक संबंध, संबंध जोड़े उसके साथ। पारिवारिक संबंध कौन कौन से होते हैं? देखो, पहले बच्चे का जन्म हुआ घर में, तो माता पिता और बच्चे का संबंध वेरी फर्स्ट। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में भेजा, टीचर स्टूडेंट का संबंध। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, गुरु के पास लेके इनको आशीर्वाद दो, गुरु शिष्य का संबंध। बच्चा और बड़ा हुआ, संबंध भी चाहिए, खेलने के लिए तो सखा चाहिए, दोस्त दोस्त का संबंध। और बड़ा हुआ, जीवन साथी चाहिए, साजन या सजनी चाहिए, तो वो संबंध। फिर और बड़े हुए, हम दोनों आपस में मिलके करेंगे क्या इतनी देर, एक बच्चा चाहिए अभी। तो शुरुआत की थी कि मैं किसी का बच्चा था, और कहाँ जाके पूरा हुआ, कोई मेरा बच्चा है। मैं जब बच्चा था मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की, अब मैं किसी कोई बच्चा मेरे आंगन में है गोद में, मैंने उसकी परवरिश करना। ये मुख्य छह संबंध होते हैं। कोई भी संबंध से उसको याद करो, क्योंकि कहा कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो दुनियादारी की बात याद आएगी, संबंधों की बात आएगी। तो वो सारी बातें जो आप सखा से कर रहे थे, वो सारी बातें जो आप माता पिता से कर रहे थे, वो सारी बातें जो टीचर से कर रहे थे, जो गुरु से कर रहे थे, जो साजन या सजनी से कर रहे थे, या माता पिता से, वो परमात्मा को। इसीलिए क्या कहा भक्ति में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। दुनिया में तो पिता अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, सखा अलग है, साजन सजनी अलग है, माता पिता अलग है, बच्चा अलग है, लेकिन परमात्मा के लिए हमने क्या कहा, मेरे सारे संबंध तुझ एक से है, मेरा सारा संसार तुझ में है। तो जब भगवान को याद भी करे ना, तो अगर दुनिया की कोई बात याद आए ना, तो वही वाली बात आप इसको सुनाओ, क्योंकि अभी मेरा माता पिता ये है। ऐसे नहीं कि वो मेरे माता पिता नहीं है, वो मेरे देह के माता पिता है, ये मेरे ज्योतिर्बिंदु आत्मा का पिता है, वो ये मुझे ज्योतिर्बिंदु आत्मा का सखा है, ये मेरे ज्योतिर्बिंदु आत्मा का साजन है। वो तो देह के होते हैं ना, मेरी मूल आइडेंटिटी तो आत्मा है ना। तो असत्य में टिककर जीवन में परमानंद नहीं आ सकता है, सत्य में टिकना होगा। तो चार आधार परिचय होना चाहिए, फिर पारिवारिक संबंध, और हर संबंध की जरूरत होती है ना। सखा की जरूरत है, सखा के रूप में बात करो, साजन की जरूरत है, सजनी की जरूरत है, उस रूप में बात करो, माता पिता की जरूरत है उस रूप में याद करो, बच्चे की जरूरत है उस रूप में याद करो, टीचर की जरूरत है उस रूप में बात करो, गुरु की जरूरत है उस रूप में याद करो। ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग विच यू आर डूइंग एट बॉडी लेवल, नाउ यू डू एट द सोल लेवल। बॉडी लेवल पर बॉडी लेवल के लोगों से कर रहे थे, सोल लेवल पर सोल का जो फादर है, सुप्रीम बीइंग, उससे करो। इजंट इट इजी? इजी है कि नहीं है राजयोग? तो परिचय, पारिवारिक संबंध, और उसमें प्रीति, प्यार हो, सूखा सूखा नहीं चलता है संबंध। और उस प्यार में फिर प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जी नहीं, वन मिनट, ये बॉडी टू बॉडी में भी, बॉडी का बॉडी से नहीं होता एक्चुअली, सोल टू सोल होता है। ये सोल टू सोल है, वो सोल टू सुप्रीम सोल है, ये सोल टू सोल है। तो जब सोल टू सोल में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो सोल टू सुप्रीम सोल में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं क्या? दोनों साथ में। बात क्या है, मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस थ्रू इनर मास्टरी। सो दिस इनर मास्टरी कम्स व्हेन यू स्टेबलाइज योरसेल्फ व्हाट यू आर, बी इन दैट। Whom do you belong? Be with that one. तब जाके स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके मास्टरी आएगी, तब जाके परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगा। Got it? तो प्राप्ति, प्राप्ति का भी हम जिक्र करके आए, प्रीति को भी हमने बहुत डिटेल में देखा, संबंध को भी अभी हमने देख लिया, परिचय कल दो दिन पहले से आपको आत्मा और परमात्मा का परिचय मिल गया, और राजयोग क्या है उसकी सारी बातें हमने आपको बता दी। क्लियर? तो चले उससे थोड़ी देर, अनुभव करें उसके निकट विराजे, और उससे निकलने वाला वो सोमरस अपने अंदर भरे, ताकि मेरे अंदर में मेरी जो खुद की सच्चित आनंद स्वरूप की क्वालिटीज वो ट्रिगर हो, वो छलके, ऐसा छलके कि अभ्यास के बाद भी, अब मैं अभ्यास में नहीं हूं, अभ्यास से उतर कर आ गई हूं, मैं अभी जो मेरे लौकिक कारोबार है, जिम्मेदारियां हैं, वहां पर हूं, लेकिन वो छलक रहा है मेरे से वो छलक रहा है, वो शांति छलक रही है, वो शक्तिशाली स्थिति दिखाई दे रही है, वो शुद्ध स्वरूप दिखाई दे रहा है। दो ग्लास होते हैं ना, समझो एक पौना भरा है और दूसरा आधा भरा है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों में पानी है, कहां से कहां पानी ट्रांसफर होगा? जो पौना भरा है उसमें से, वो उसमें से निकलकर कहां जाएगा? जो आधा भरा है कब तक जाएगा? जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। हम आजकल जिन लोगों के साथ उठते बैठते कारोबार करते हैं, उन हम आपस में हमारे ग्लास कैसे हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि मेरा पौना भरा है और आपका पाव भरा इतना है? लगभग थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो जब भी हम कनेक्ट होते हैं, तो अगर गेन होगा भी, समझो मेरा 10% भरा है और उसका 11% भरा है, तो उसमें से सिर्फ 1% मेरे को मिलेगा। तो मैं अगर उसमें से कनेक्ट होके गेन भी कर रही हूं तो कितना कर रही हूं, और अगर मेरा 10% भरा है और उसका 9%, तो मेरा ड्रेन हो रहा है, मेरा 1% उसके पास चला जाएगा ना। तो गेन और ड्रेन दिन भर में हो रहा है, पर मोस्टली ड्रेन ही हो रहा है। और इसलिए राजयोग करना जरूरी है, क्योंकि मैं आत्मा भल ग्लास हूं, लेकिन परमात्मा ग्लास नहीं है, परमात्मा ओशन है। और इसलिए दो ग्लास के इसमें तो दोनों के लेवल जब तक एक न हो जाए तब तक आ रहा है, लेकिन यहां से कब तक आता रहेगा? लगातार लगातार आता ही रहेगा। लेकिन मेरा ग्लास तो फुल हो गया, तो फुल होने के बाद क्या होगा? छलकेगा, दूसरों तक पहुंचेगा। तो आत्मा का तो प्यूरिफिकेशन होगा ही, फिर वो छलक कर बॉडी को मिलेगा, बॉडी को स्वस्थ, उसकी बढ़ाएगा स्वस्थता, फिर जिनके साथ उठती बैठती हूँ वहां प्रेम छलकेगा, शक्ति छलकेगी, वहां रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, जिस सराउंडिंग में रहती हूँ उस चारों ओर के प्रकृति के तत्वों को मेरी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगी, वो भी एलिवेट होंगे। तो इसको कहते हैं स्वयं से शुरुआत करके विश्व की सेवा तक पहुंचना। तो चलिए चंद क्षणों के लिए ये अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास के लिए सीधे बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, पीठ, गर्दन और सिर बिल्कुल एक सीध में हो, और मैं कमेंट्री करूंगी, आपने क्या करना है, कमेंट्री का जो संकल्प है उसे अपना संकल्प बनाएंगे मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, वैसा विजुअलाइज करेंगे और हृदय के माध्यम से उस भाव को भी क्रिएट करेंगे और इस प्रकार से आत्मा का परमात्मा से मिलन का ये सफर करके हम परमानंद की अनुभूति करेंगे। सब तरफ से ध्यान हटाकर मस्तक के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें। तिलक जहां लगाते हैं वहां भीतर में विजुअलाइज करें आत्म ज्योति, दिव्य प्रकाश में सितारे की तरह चमक रही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न किंतु शरीर के भीतर, मुझे इस शरीर में रहते एक लंबा काल हुआ है और परिणाम स्वरूप मैं अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इस शरीर और शरीर से प्राप्तियां जो हुई उसे ही अपनी पहचान बना ली। परिणाम ये हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट जैसी लोअर फ्रिक्वेंसीज ने मेरे चित्त में स्थान बना लिया और मैं जो आत्मा सत्य चैतन्य आनंद शांति शक्ति शुद्धि और प्रेम की फ्रिक्वेंसी से भरपूर, उसके ऊपर उसने वर्चस्व जमा लिया। परिणाम परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है लेकिन अब मैंने इस शरीर के भीतर विराजमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा को पहचान लिया है। मेरे अपने गुणों को मैंने पहचाना है। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं शांति शक्ति और शुद्धि का पुंज हूँ। मैं प्रेम का अखुट भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर ये हायर फ्रिक्वेंसीज रेडिएट हो रही हैं और इस हायर पोजीशन में मैं स्वयं को इस देह रूपी पैकिंग से बाहर करती हूँ और ले चलती हूँ स्वयं को उस लोक में जो मेरा मूल घर है, परम धाम जहाँ मेरे परम पिता रहते हैं। जहाँ जाकर मैं उनके निकट विराजमान होकर परमानंद की अनुभूति करना है। तो देखें, आत्मा ज्योति जगमग प्रकाश फैलाती हुई हायर फ्रिक्वेंसीज रेडिएट करती हुई ऊपर की ओर चल रही है, आसमान को पार करके एक ऐसे लोक में प्रवेश कर गई है जहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, और उसके बीचों बीच मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा जगमगा रही हूँ, शांति को एब्सॉर्ब कर रही हूँ, डीप साइलेंस को अनुभव करती हूँ। इस सुनहरे प्रकाश वाली दुनिया में मैं क्या देख रही हूँ? मुझ आत्म सितारे के अलावा एक और परम सितारा है, परम ज्योति है। ओहो, कितना दैदिप्यमान ये स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम है ये, कितनी शुद्ध शक्तिशाली किरणें इसमें से निकल कर मुझ आत्मा की तरफ आ रही है, मुझे आकर्षित कर रही है। मैं उनके आकर्षण में उनके करीब जा रही हूँ, उनके करीब खींचती हुई पहुँच गई हूँ। ये मेरे पिता हैं, मेरे बाबा। बाबा, आपका रूप कितना सुंदर है, इसमें से निकल रही रश्मियाँ मुझे कितना सुंदर अनुभव प्रदान कर रही है। मैं तो आपके सुंदर रूप की कशिश में इस शुद्ध शक्तिशाली रश्मियों के स्पर्श में जैसे कि प्रेम से परिपूर्ण अवस्था में टिक गई हूँ। झूठा अहंकार झूठी पहचान से बहुत दूर अपनी सत्य पहचान में टिकी हूँ। मेरा झूठा अहंकार गल गया है, मात्र अपना ज्योति स्वरूप दिखाई देता है। सत चित आनंद स्वरूप प्रकाश की अनंत किरणें निकल रही है, ये मेरा असली अस्तित्व है। परंतु मेरा ये अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। मेरी पहचान मेरे अस्तित्व से नहीं, मेरी पहचान मेरे पिता परमात्मा के अस्तित्व से है। देखे मैं उनके सुंदर स्वरूप और उनसे निकलने वाले रश्मियों को ग्रहण करने में स्थिर हो गई हूँ, एकाग्र हो गई हूँ। मेरा अस्तित्व ही नहीं रह गया, सिर्फ वो ही रह गए, मेरे पिता परमात्मा की रश्मियां मुझ आत्मा पे वर्क कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन एम्पावरमेंट। कुछ पलों के लिए इस स्थिति में स्थिर रहे, एक्सपीरियंस द बीइंग एंड देन एक्सपीरियंस द सुप्रीम बीइंग बियॉन्ड डूइंग। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीइंग को, सुप्रीम बीइंग को एक्सपीरियंस करना है। कितनी सुंदर ये विधि है, कितना सुंदर ये सफर है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, कितनी सुंदर अनुभूति है परमानंद की, एक शाश्वत संतुष्टि का अनुभव। इसी सुंदर अनुभूति को लेकर पिता परमात्मा से मैं सदा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे उसके साथ शाश्वत संबंध है। ऐसी सुंदर अनुभूति के साथ मैं लौट कर आती हूँ उस सुनहरे लाल रंग वाली दुनिया से, इस पंच तत्वों की दुनिया में। देखें आत्मा झिलमिल झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई परम आनंद संतुष्टि की वाइब्रेशन फैलाती हुई नीचे उतरती है और आकर इस पंच तत्वों की दुनिया में, पंच तत्वों की बनी इस देह में वापस भ्रुकुटी में विराजमान। और अब मैं तैयार हूँ अपने वर्क प्लेस पर परफॉर्म करने के लिए, कि जिस परफॉर्मेंस में संतुष्टि की एक्सप्रेशन सदा बनी रहेगी, हर परिस्थिति को टैकल करने का एक नया तरीका होगा, आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लूंगी, लेटिंग गो करूंगी। फॉरगिविंग और फॉरगेटिंग को अपनाऊंगी, परफॉर्मेंस पीक पर चला जाएगा और सब कुछ जो बिगड़ता जा रहा था वो सर्वश्रेष्ठ होता जाएगा। ओम शांति शांति शांति।